ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने प्रौद्योगिकी की ताकत और सुशासन के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। श्री मोदी ने यह टिप्पणी माई जीओवी इंडिया के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करने के बाद की। पोस्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रामीण भूमि डिजिटीकरण भारत में कृषि के भविष्य को नया आकार प्रदान कर रहा है। इस परिवर्तनकारी कदम से भूमि विवादों को कम करने और भूमि प्रबंधन में सुधार के अतिरिक्त पारदर्शिता सुगम्यता आई है और ग्रामीण समुदाय सशक्त बने हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि इससे ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वामित्व और अधिकारों का दावा करना आसान हो गया है, जिससे कृषि का भविष्य नया रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करके ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े धन शोधन मामले में 300 करोड़ रुपए की 142 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य कई व्यक्तियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। निदेशालय ने कहा है कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि MUDA मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच ने एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शामिल हैं। श्री विजेंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से आवासीय जमीन आवंटित कराने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति आज पटना में विचार विमर्श करेगी। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह समिति राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से देश में पंजीकृत लाखों वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। विधानसभा के 70 सीटों के लिए 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। उधर महाराष्ट्र के गृह राजस्व ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम में हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। खो खो विश्व कप में मेजबान भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ही टीमों ने पुणे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।